सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 14
नमः सिद्धेश्वर
पंडित श्री आशा जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है जिसमें श्री अवकाचार का वर्णन किया हुआ है। ये ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है, उसकी संस्कृत टीका भी उन्होंने लिखी है। हम यहाँ देख रहे थे पृष्ठ संख्या 58 पर 58। यहाँ अष्टमूल गुण की अलग अलग पद्धति से हमने चर्चा की है और यहाँ रात्रि भोजन संबंधी बात चल रही थी। यहाँ पढ़ेंगे हम ये नया पैराग्राफ 58 पृष्ठ पर। आचार्य अमृत चंद्र ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 अनुव्रतों के कथन के बाद रात्रि भोजन त्याग का कथन करते हुए कहा है कि रात्रि में भोजन करने वालों को हिंसा अनिवार्य है, यानी होती ही है। इसलिए हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। त्याग भाव, यानी त्याग करने का भी भाव नहीं हो रहा है, उससे भोजन कर रहा है, वो क्या बताता है? तो त्याग भाव रागादि भावों के उदय की उत्कटता, उत्कटता यानी तीव्रता, उससे होता है, अतः हिंसा रूप है। क्या कहते हैं? रागादि भावों की तीव्रता, इसलिए वो हिंसा रूप है। हमने तो राग की उत्पत्ति होने को भी हिंसा यहाँ लिखा है, कहा है। इसलिए जहां तीव्र राग है वहां तो हिंसा अवश्य है। एक बात, जो रात दिन खाते हैं उन्हें हिंसा क्यों नहीं लगेगी? यदि कोई कहे तब तो दिन में न खाकर रात्रि में ही खाना चाहिए, इससे हिंसा नहीं लगेगी। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सारी चर्चा है इसे, किंतु ऐसा कहना गलत है, क्योंकि दिवा भोजन की अपेक्षा, दिवा भोजन यानी दिन में भोजन करना, रात्रि भोजन में अधिक राग होता है। ये तो दिवाए ने वो दीपक को नहीं समझना इसमें परमिशन दे दी। हाँ, कैंडल लाइट। जैसे अन्न भोजन की अपेक्षा मांस भोजन में अधिक राग रहता है, सूर्य के प्रकाश के बिना दीपक जलाकर रात्रि में भोजन करने वाला हिंसा से कैसे बच सकता है? क्योंकि भोजन में सूक्ष्म जीव गिरते ही है। अधिक कहने से क्या, देखो ये तो अपने को दिखाई भी नहीं देते ऐसे जीव भी, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इस काल में होती है, ट्वाइलाइट जिसको कहेंगे, संध्या काल, जैसे सूरज डूब गया है, उनकी उत्पत्ति का वो समय ही है और उनकी लाइफ भी इतनी छोटी होती है और वो दीपक के यानी प्रकाश की तरफ आकृष्ट होते हैं और आकर गिर जाते हैं। अधिक कहने से क्या, और ये तो होते तो समूर्छन है। लोग ऐसी दलील करते हैं कि हमारे घर तो इतने स्वच्छ है और ये तो पहले के जमाने में तो अग्नि वाले दीपक थे, अभी तो ट्यूबलाइट है, तो वहां तो उसमें आके जलने की बात तो है ही नहीं है, ऐसी ऐसी दलील होती है। परंतु गैस जलाते हैं तो गैस में भी आकर वहां मरेंगे या डायरेक्ट भोजन में आकर गिरेंगे, पता भी नहीं लगेगा केवल गिरने की बात नहीं, ऐसे ऐसे उसमें उत्पत्ति भी होती रहती है। समूर्छन जीव है क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है विशिष्ट वातावरण में अपने आप होती है। हमारे घर इतने साफ सुथरे हैं, फिर भी दाल रखी रहो कुछ दिन तक तो उसमें से कहाँ से आते हैं कीड़े वगैरह, कैसे पैदा होते हैं? इतनी साफ सफाई है ना, तो कैसे उत्पन्न हो गए? आजकल तो फ्रिज में रख दिया तो ऑल प्रूफ समझ लेते हैं, क्यों? ऐसा भी नहीं है, उस ठंडे वातावरण में उत्पन्न होने वाले समूर्छन होते हैं। हमें तो अमेरिका वालों ने बताया, अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा साइंटिस्ट ने शोध लगाया है कि बर्फ में भी उसकी विशिष्ट ईयल होती है, ईयल यानी इल्ली लटे, उस वातावरण में पैदा होने वाले। तो जैसे अभी नॉर्थ पोल पर वहां कोई प्राणी रहते कि नहीं रहते? पोलर बियर आपने सुना होगा, देखा होगा पिक्चर्स में, तो वो उसी वातावरण में रहने वाले हैं। ऐसे उसी वातावरण में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे समूर्छन जीव भी होते हैं। तो हम तो समझते हमने सब पैक कर दिया, फ्रीजर में रख दिया तो ऑल प्रूफ हो गया, ऐसा है नहीं। वहां तो अमेरिका में डेट लिख कर अंदर रखते, दाल उनकी होती है 15-15 दिन की, पकाई हुई हो तो ये दाल नहीं, बॉइल करके। हाँ, कितने तो महिलाएं 3-3 महीने की रोटियां बना के आती है, फ्रीजर में रख देती है फ्रिज में, और निकालते हैं उसको माइक्रो में ग्रह। हाँ, हमारा तो नियम है कि हमको रोज का डेली सुबह और शाम नया मैंने ताजा बनाया हुआ, वो आटा भी गूंद कर फ्रिज में रखा हुआ हम नहीं खाते। पहले बता दिया सबको, आप जो करते हो हमारे लिए ये नहीं चलेगा। वो तो चावल रह गया, डालो वो प्लास्टिक के, उसमें रख दिया। ये सब ऐसे ही चलता है। तो उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती है, वहां पर भी अपने जैसे पालने वाले हैं, ऐसा नहीं समझना कि वहां सब ऐसा है। ये आते ना आशा, उसकी लड़की है और जमाई है, वो तो शाम का कुछ रह गया तो भी जाके बर्ड्स को वो पंछियों को जाके डाल के आते, कितना भी अच्छा हो कितना भी बचा हो वो दूसरे दिन भी उसका यूज नहीं करते। नहीं पड़ते अभी, क्या उनका आदत हो गई ऐसे। गरम करते खाते हैं, माइक्रो में रखते हैं, अच्छा तो है ही नहीं है। ऐसे भी आयुर्वेद में, यहाँ कोई आयुर्वेदाचार्य के पास चले जाओ, वो तो पहले में पहले फ्रिज का खाना बंद करेंगे। हाँ, अब फ्रिज वाली चीजें बंद करो कहेंगे। देखो आगे हम बढ़ेंगे, यानी वो फ्रीजर में रखने से वो समूर्छन, उस टाइप के समूर्छन पैदा तो होंगे ही होंगे, उसका निषेध नहीं हम कर सकते। ऐसे तो हम दवा लेते हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी देते देखते हैं, एक्सपायरी डेट वाला तो नहीं खाते, और अनाज तो चल जाएगा उसमें भी एक्सपायरी हो जाती है। आएगी आएगी। अधिक कहने से क्या, जो मनोवचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा का पालन करता है। इसी तरह जल को भी मोटे वस्त्र से छानकर ही काम में लेना चाहिए। मोटा समझते हैं?
ठीक
ठीक ठीक ठीक। आज तो खुर्दबीन से यानी माइक्रोस्कोप से जल में जीवों को देखा जा सकता है, नल के पानी में तो कभी कभी सांप के बच्चे तक आ जाते हैं। ये कैलाश चंद जी जो है सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने लिखी हुई है विशेषार्थ, क्योंकि आप कहेंगे वो 800 साल पहले नल कहाँ थे, उनकी बात नहीं है, ये विशेषार्थ की बात हम कर रहे हैं। आचार्य सोमदेव ने इसी से कहा है कि सब पतली वस्तुओं को वस्त्र से छानकर ही काम में लाना चाहिए, یعنی دودھ چھان کر لیتے ہیں، کوئی پھلوں کے رس چھان کر، اس یہ پتلے چیزوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں. منوسمرتی تک میں پانی چھان کر پینا لکھا، یہ منوسمرتی انیہ متوں کا گرنتھ ہے، اس میں بھی پانی چھان کر پینے کی وہاں اپدیش انہوں نے کیا ہے. اب مور جنوں کو آکرش کرنے کے لیے درشٹانت دوارا راتری بھوجن تیاگ کا پھل بتلاتے ہیں. اس کے بھی وہ پراسک بنانے کی ودھی بھی وہ آئے گی. پراسک بنانے کے لیے یعنی کیسے پراسک کریں گے، تو کتنے گھنٹے ٹکتا ہے اس کی بات ہے. ابال لیں گے تو 24 گھنٹہ ہے، پھر اس میں کوئی لونگ ڈالیں گے، سونگ ڈالیں گے، یا کوئی انار کا وہ سوکھے ہوئے وہ ڈالتے ہیں، تو ایسی ایسی چیزوں سے وہ 6 گھنٹے تک کی اس کی سیما مریادا بن جاتی ہے. الگ الگ طریقے ہیں کہاں کتنا بڑھتا ہے اور کتنے. کیول اپنے چھان کر لکھا تو انترمور کی بات ہوتی ہے، پھر دوبارہ چھاننا اس کو. اوپر 15 نمبر کا شلوک پڑھیں گے. चित्रकूटेत्र मातंगी आमानस्तमित व्रतात् स्वभर्त्रा मारिता जाता नागश्री सागरांगजा. मालो देश की उत्तर दिशा में प्रसिद्ध चित्रकूट नामक नगर में एक पहर मात्र के रात्रि भोजन त्याग व्रत से अपने पति के द्वारा मारी गई चांडाली मरकर सागर दत्त श्रेष्ठी के नागश्री नामक कन्या हुई. इन्हें किसी ने चांडाली समझते ना, अभी उसने व्रत लिया था रात्रि भोजन त्याग के लिए, वो एक प्रहर मात्र के लिए उसने व्रत लिया, तो उसके पति ने मारा होगा, मुझे पूरी स्टोरी मालूम नहीं है. तो मरकर वो उसके मार से मरकर वो अन्य किसी शेर के यहाँ पुत्री होकर जन्मी. प्रहर का देखो 24 घंटे ने 8 प्रहर, 3 घंटे कलाक हो गए, क्योंकि पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर रहते हैं.
चौकड़ी तो 1.5 घंटे का रहता
है. यानी उसने व्रत लिया होगा और इतने घंटे पाला होगा, तो उसने पति ने मारा होगा, मुझे तो पक्का मालूम नहीं है. अभी ये सारी स्टोरिया जो कथाएं हैं वो तो सोमदेव के उसमें आए. आगे बढ़ेंगे. आगे कहते हैं, इस प्रकार मध्यादि त्याग के अभ्यासी पाक्षिक श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार स्थूल हिंसा आदि 5 पापों से विरति का भी अभ्यास करना चाहिए. पहले तो मधुमध्य मांस 5 उदुम्बर फल, उसे में कहीं रात्रि भोजन भी बताया, नवनीत भी बताया, अलग अलग हमने देखे ना, कहीं कहीं अलग अलग पद्धति से वर्णन है. 16 नंबर ऊपर पढ़ेंगे. पहले स्थूल हिंसानुतस्ते मैथुन ग्रंथ वर्जनम पाप भीरुतयाभ्यसे बलवीर्यानि गुहक. अपने बल और वीर्य को न छिपाकर अपनी अंतरंग और शारीरिक शक्ति के अनुसार पाक्षिक श्रावक को पाप के भय से स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल मैथुन और स्थूल परिग्रह के त्याग का अभ्यास करना चाहिए. विशेषता, आहार आदि से उत्पन्न शक्ति को बल कहते हैं और नैसर्गिक शक्ति को वीर्य कहते हैं. अच्छे डेफिनेशन होता है. क्या कहते हैं? नेचुरल जो है उसकी जो वो वीर्य. आहार आदि में अभी आहार है, कोई कसरत है, अभी हम सोच सकते हैं, उसको हम बल कहेंगे. अपनी शक्ति के अनुसार, दोनों ही शक्ति है ना, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार पाक्षिक श्रावक को 5 अनुव्रतों के पालन का भी अभ्यास करना चाहिए. ये महाव्रत नहीं है. महाव्रत में तो बिल्कुल अतिचार रहित ऐसा सूक्ष्म भी हिंसा टलती है उसमें, तो तो यहाँ तो मोटे तौर पर है, इसलिए इसको स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ आदि का त्याग बताया। इसी को अनुरत कहते हैं। अनु का अर्थ होता है थोड़ा, ये शतप्रत। यह भी यह मानकर करना चाहिए कि हिंसा आदि पाप है और इनके करने से पाप कर्म का बंध होता है। यदि कोई राज भय या सामाजिक भय से इन पाप कार्यों को नहीं करता है तो उसे व्रत नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? दूसरे कोई मुझे क्या कहेंगे, इस भय से अगर वो नहीं करता है, नहीं बोलता है, तो कहते वो उसको व्रत नहीं कहता है। तो ये हिंसा आदि पाप है ऐसा जानकर उसके जो छोड़ना चाहता है उसी के, और वो भी प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ेगा ना, तो ये उसके व्रत कहलाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्राय छिपकर पाप करते हुए नहीं सब कुछ आते, जो समाज के भय से जो होते हैं करते नहीं है, तो अकेले में तो उसको निसंकोच कर देंगे। किंतु व्रती तो पाप करने का अवसर मिलने पर भी पाप के भय से पाप कार्य नहीं करता और तभी उसके पूर्व अर्जित कर्मों की निर्जरा होती है। आगे कहते हैं, इस प्रकार स्थूल हिंसा आदि की विरति का अभ्यास करने वाले पाक्षिक श्रावक को वेश्या आदि की तरह जुआ खेलने आदि में भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ये आसक्ति नहीं, आसक्ति चाहिए, यानी सप्त व्यसन नहीं करने चाहिए, सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए। ऊपर 17 नंबर हम पढ़ेंगे। द्योते हिंसानुतस्ते लोभ माया मये सजन क्वस्वं क्षिपति नानर्थे वेश्या खेटान्यदारवत। वेश्यागमन शिकार खेलना और परस्त्री गमन में आसक्त मनुष्य की तरह हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ और मायाचार से भरे जुए में आसक्त मनुष्य अपने को, अपने संबंधियों को किस अनर्थ में नहीं डालता, ये प्रश्न चिन्ह चाहिए उसे, अर्थात सभी बुराइयों में डालता है। यानी उसके जो हम वेश्यागमन शिकार और परस्त्री गमन, ये तो बुरे है ही है, तो उसी के साथ द्युत यानी जुगाड़, हाँ जुगाड़। अभी उसके नए नए नाम देकर कुछ चलता रहता है, सब लीगलाइज कर दिया है। अभी लॉटरी है और क्या क्या नाम है, मटका होता है, लॉटरी होती है, हमें पता भी नहीं क्या क्या होता है। हम कौन सी गांव में गए थे, वहाँ बहुत कुछ भी, यानी ऐसी गली है कि वहाँ तो लोग पैसा लगाते ही नहीं। अरे बाहर की देने, अपने इंडिया की बात, अमेरिका से राजकोट में गली थी, हम जाते थे ना, वो कुछ भी उनके तो कोई भी कारण चलता था पैसा लगाने के, यानी बेट मारना, कुछ भी, यानी ऐसी गली थी उसमें, तो ये तो ऐसा ही चलता था सारा व्यवस्था। यानी भी कोई मैच की तो चलो उसकी तो चलती है, बैटिंग चलती है, उनके लिए तो कुछ भी, किस पे भी लगा, ऐसे हंसी आती है कि ऐसी ऐसी चीजों पर भी लोग पैसा लगाते। वहाँ कोई बता रहे थे अपने को विशेषार्थ। पाक्षिक श्रावक को पांच पापों के त्याग का अभ्यास करने की तरह सात व्यसनों के भी त्याग का अभ्यास करना चाहिए। सात व्यसनों में जुआ सिरमौर है, सिरमौर ने उसका मुखिया है, इसलिए उस पर जोड़ दिया है। ये अभ्यास करना यानी वो करना ही नहीं चाहिए। वेश्यागमन, परस्त्री गमन, जुआ खेलना आदि के व्यसनी मनुष्य स्वयं तो विपत्तियों में पड़ते हैं, अपने परिवार वगैरह को भी विपत्ति में डालते हैं। यहाँ इतना विषय, ये भी व्यसन है ना, जैसे ड्रग्स के एडिक्ट होते, व्यसनी होते, वैसे इनके भी व्यसनी होते, उनके बिना उनकी तो चैन नहीं पड़ती और कुछ विचार नहीं करते है, न संपत्ति का, न अपने कुटुंब का, न फ्यूचर का कुछ। यहाँ इतना विषय जानना कि पाक्षिक श्रावक मन बहलाव के लिए ताश आदि खेल सकता है, प्रारंभिक श्रावक होने से वह अभी उसका त्याग नहीं कर सकता। ये पैसा लगा के नहीं खेलेगा, शायद इसी से आचार्य अमृत चंद्र ने अनर्थ दंड त्याग नामक गुणव्रत में द्यूत को दूर से ही छोड़ने की प्रेरणा की है, क्योंकि वह सब अनर्थों की जड़ है, माया का घर है और चोरी तथा झूठ का स्थान है। हाँ, द्यूत की बात चल रही है, जुगाड़ की बात चल रही है। ये हमें तो द्यूत नहीं, कौन जुगाड़ थोड़े ही खेलेंगे, जैने ऐसा लगता है, छोटी छोटी बात में लगाता है, बेट लगाता है, पेज लगाता है, ये क्या है, वही बात है, वही से तो शुरू हो जाती है बात। हाँ, वो क्या होता है मुझे पता है, हाउसिंग
अनाउंस करते वैसे होंगे तो खेलना चाहिए, इसका पहला होंगे
पैसा लगाते हैं, कोई प्राइज मिलता है केवल उसके, वहाँ इसका ऐसा नहीं है, उसका लेते हैं
टिकट।
अच्छा अच्छा,
हाँ हाँ, प्रिंटर देता है,
मैंने लकी ड्रॉ दे सब
कुछ
नहीं, वो नंबर जो नंबर करते वही ना, वो नंबर बोलते अच्छा अभी समझ लेना देते। वह सब अनर्थों की जड़ है, माया का घर है, चोरी तथा झूठ का स्थान है, इनके बिना जुआरी का काम नहीं चलता। किसी जुआरी की संसार में जीवन बिताने की दशा का चित्रण करते हुए कहा है कि उसके पास लंगोटी के सिवाय दूसरा वस्त्र नहीं होता, निकृष्ट अन्न का भोजन करता है, जमीन पर सोता है, गंदी बातें करता है, कुटुंबी जनों से लड़ाई झगड़ा चलता है, दुराचारी उसके सहायक होते हैं, दूसरों को ठगना उसका व्यापार है, चोर मित्र होते हैं, सज्जनों का अपना वैरी मानता है, प्रायः जुए के व्यसनी की यही दशा होती है। हम तो देखते हैं किसी भी व्यसन के अधीन हो जाता है, दारू हो या कोई ड्रग्स हो, उसी की भी ऐसी दशा हो जाती है। आचार्य पद्मनंदी ने जुए की निंदा करते हुए कहा है, यह जुआ अपयश का घर है, चोरी वेश्या आदि सब व्यसनों का स्वामी है, सब विपत्तियों का स्थान है, पाप का बीज है, दुखदायी नरक के मार्गों में अग्रगामी है, अग्रगामी ने अग्रेसर प्रमुख है। ऐसा जानकर कौन बुद्धिमान जुआ खेलना स्वीकार कर सकता है। हाँ, वो तो अब रोज का रोज उसके वो परिणाम की चंचलता उसमें भी है, क्या हुआ, कहाँ, कितना, अभी उसमें डाल दिया है, आप उसकी चिंता नहीं करना, वो बात अलग है। और वो
जिनका वही व्यवसाय है,
हाँ वही व्यवसाय है, या उसी में उनका पैसा कमाने का मुख्य साधन बना दिया, वो तो उसके कितने अंदर आकुलता तो होती है ना क्या, और उसके बिना तो चैन नहीं पड़ता, अभी आज मेरा क्या हुआ, कितना ऊपर गया माल की कीमत, कितनी नीचे गिरी, उसके बारे में सदैव उसका, और मान लो गिर गए तो होता है। यानी ये राग की इतनी तीव्रता होती है, परिणामों की चंचलता कितनी होती है, इसी से वेश्यादि व्यसनों को भी विनाश निंदा की बहुलता से असेवनीय कहा है। आचार्य पद्मनंदी ने वेश्या की निंदा करते हुए कहा है, उन वेश्याओं के सिवाय दूसरा नरक नहीं है। जो मांस खाती है, मदिरा पीती है, झूठ बोलती है, धन के लिए ही प्रेम करती है, धन और प्रतिष्ठा की हानि करती है, रात दिन नीच पुरुषों की भी लात पीती है, जो धोबी की कपड़े पछाड़ने की शिला के समान है, जिनका आचरण कुत्ते के खप्पर समान है, उन वेश्याओं का यदि संसर्ग किया तो परलोक की तो बात ही व्यर्थ है। जो धन की आशा से अपना मनोहर शरीर जन्मांध को, गोमुख को, जरा से जीर्ण अंग वाले को, जरा इन्हें बुढ़ापा को, ग्रामीण को, अकुलीन को तथा गलित कुष्ठ से ग्रसित जनों को भी देती है, विवेक रूपी कल्पलता को काटने के लिए शस्त्र के समान उन वेश्याओं से कौन अनुराग करेगा। इस प्रकार वेश्या व्यसन की बुराइयां बताकर आचार्य पद्मनंदी शिकार खेलने वालों की निंदा करते हैं। एकमात्र दुखदायक शरीर ही जिसका धन है, जिसका कोई भाई आदि संबंधी भी नहीं है, वन में रहती है, जो स्वभाव से ही डरपोक है, दांतों में तिनका लिए, तिनका ने घास, ये हरणी की बात, हिरण की बात चले, या हरिणी, वो तो घास खाती है ना, मांसाहारी तो है नहीं है, किसी का अपराध भी नहीं करती, मांस भोजन के लोभ से जिस शिकार में ऐसी हरिणी भी मारी जाती है, उस शिकार के प्रेमी मनुष्य इस लोक और परलोक में जो पाप करते हैं, उसे कौन कहने में समर्थ है। जो लोग शरीर में जरा सी चींटी के भी काटने पर व्याकुल होकर आंख में पानी ले आते हैं, वे ही दुख को जानते हुए भी शिकार के आनंद में चूर होकर निरपराध मृग का कैसे शस्त्र उठाकर घात करते हैं। और इसमें तो अपना बड़प्पन मानते थे, पहले तो जमाने में शिकार तो करते थे राजा, और उसके वो सिर काट कर उसको भूसा भरकर था दीवान खानों में वो रखते थे। शिकार के पश्चात परस्त्री व्यसन की निंदा करते हुए कहते हैं, परस्त्री गामी को इसी भाव में जो चिंता, व्याकुलता, भय, अरति, बुद्धिनाश, अति संताप, भ्रम, भूख, प्यास, आघात, रोग, दुख, मरण आदि प्राप्त होते हैं, वे तो रहे, किंतु उससे महान दुख चिरकाल तक नरक में जो आग में तपी लोहमयी नारियों के शरीर पे, क्या कहते हैं, नरक में कैसे एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो लोहमयी वो पुतले होते हैं, नारी का पुतला बनाया है और कैसे आग में तप्त करके, क्योंकि इसके इसने परस्त्री गमन किया है तो उसको उसको आलिंगन कराना ही करवाते हैं। आश्चर्य है कि यह उसे भी नहीं देखता, यानी उसका फल इतना बुरा है फिर भी वर्तमान में वो उसकी नहीं सोचता। जो पुरुष काम से पीड़ित होकर परस्त्री के पास जाता है, उसने जगत में अपयश की दुग्धी पीट दी है, अपने कुल के नाम पर कालिमा पोत दी है, चारित्र को जलांजलि भेंट कर दी है, गुणों के समूह रूप उद्यान में आग लगा दी है, समस्त आपत्तियों को निमंत्रण दे दिया है और मोक्ष नगर के द्वार पर मजबूत कपाट लगा दिए, दरवाजे से बंद कर दिए, इस तरह परस्त्री व्यसन की बुराइयां बताकर आचार्य मद्यपान व्यसन की बुराइयां कहते हैं। क्या? हाँ जी, जो मध्य इस जन्म में समस्त पुरुषार्थों का नष्ट करने वाला है तथा आगे उत्तरोत्तर अधिक दुख का कारण है, यदि बुद्धिमान उस मद्यपान को भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर इस लोक में धर्म के लिए अपना हितकारक अन्य कौन काम कर सकते हैं। मद्यपाई निर्लज्ज मनुष्य माता को प्रिया मानकर जो निंद चेष्टाएं करते हैं, वे तो दूर रहे, उससे भी अधिक खेद की बात यह है कि मार्ग में मदहोश होकर कुत्ते के पेशाब को बड़ा मधुर है कहते हुए पी जाते। मद्यपान के पश्चात मांस व्यसन की निंदा करते हैं। मांस घिनावना होता है, प्राणियों के घास से उत्पन्न होता है, अतएव अपवित्र, कृमियों का उत्पत्ति स्थान और निंदनीय होता है। बड़े पुरुष कृमि है वो तो त्रस जी उत्पन्न होते हैं उसमें। बड़े पुरुष तो उसे हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते और आंखों से देख नहीं सकते। वह मांस खाने योग्य ऐसा कहना भी सज्जनों के लिए गर्भित है। उस मांस को जो साक्षात पाप है, खाने वाले पुरुष की लोक में क्या गति होगी हम नहीं जानते। यदि कोई अपना संबंधी बाहर जाकर जल्दी नहीं लौटता तो मनुष्य सिर पीट पीट कर रोता है। वही मनुष्य दूसरे प्राणियों को मारकर उनका मांस मुंह फैलाकर खाता है। हे कलिकाल, तुम्हारे इस विचित्र चरित्रों को देखकर हमें तुमसे विरक्ति होती है। जो जिसके द्वारा मारा जाता है वो उसे इसी लोक और परलोक में भी अनेक बार मारता है। जिसने उसके मारकर खाया है तो भविष्य में अन्य भव में वो जरूर इसको मारेगा, ये बात चलती रहती है। चालू रहता है ना, अन्य को भी मारेगा वो। हो सकता है कि वो दूसरे मनुष्य ने वो पाप से निवृत्त होकर समय दर्शन होगा, मोक्ष प्राप्त कर लिया, चला जाएगा उसमें से। परंतु ये संभव है ना बात। ये द्रोणगिरी में कौन, वहाँ वो सिंह की बात आती है ना, द्रोणगिरी में ही था ना वो सिंह ने, ब्राह्मण ने उनको आग से जलाया था। वो गुरुदत्त की मुनि की बात है ना। हाँ हाँ, यानी एक सिंह था और उसको पकड़ने के लिए राजा के सैनिक गए थे। राजा था वो मुखिया, तो उन्होंने वो एक गुफा में गया तो बाहर से उसको लकड़ी आदि डालकर जलाया, तो सिंह वहां जलकर मर गया। फिर वो सिंह उसी गांव में ब्राह्मण या किसान होकर जन्मा और ये राजा फिर दीक्षा लेकर मुनि हो गए। राजा का तो वही भव चल रहा था। वो जो सिंह मरकर जो किसान हुआ था, तो ये जब ध्यान में थे या वन में बैठे हुए थे तो उसको उनको देखकर उनके प्रति वैर भाव जागृत हुआ। उन्होंने ऐसे लकड़ी सारी ओर से लपेटकर उनको वहां जला दिया। ये कहते ना वो इस लोक में या परलोक में वो आकर अपने को मारेगा। हाँ, गुफा भी दिखाते हैं। जो जिसके द्वारा ठगा जाता है वह उसे इस लोक और परलोक में भी अनेक बार ठगता है। यानी जैसे हिंसा के बारे में वैसे ही ठगने के बारे में, मायाचारी है, चोरी है। यह बात स्त्री और बालकों से भी तथा शास्त्र में भी सुनी जाती है, फिर भी लोग धोखा देही यानी दूसरे को धोखा देना और हिंसा को छोड़ते हुए क्यों संकोच करते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रपंच पूर्ण वचनों से दूसरों के धन को ठगते हैं वे निश्चय ही उस पाप समूह से नरक में जाते हैं। अकेले हिंसा वाला ही नहीं, सभी वो मायाचारी है, वो तीव्र क्रोध है, मान है, माया है, सभी। इसका कारण है कि धन मनुष्यों का प्राण है, क्योंकि धन से ही प्राण रहते हैं। अतः धन नष्ट होने पर मनुष्य को जितना दुख होता है उतना प्रायः मरते समय भी नहीं होता। हम देखते हैं किसी को बहुत बड़ा लॉस है, हाय मैं मर गया। क्यों किया? लॉस हुआ इसलिए। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं, कैसे कैसे परिणाम ऐसा दिखने के लिए तो कितना इतने ट्रैवल यानी इतने पैसे कमा कर भी क्यों इतना लॉस हो जाता है, ये भी सोचने जैसा है ना। आपका उदय आ जाता है या इसे इसमें कहीं ना कहीं पैसे चले जाते हैं। होता है ऐसा, होता रहता है। इसे तो कहते पाप पुण्य के फल तो ऐसे होते रहते हैं, और ऐसा एक दो बार थोड़ा ही है। अनादि से जन्म मरण करता आया है, अनादि से क्या क्या दुख नहीं भोगे होंगे, ऐसे कहते शास्त्र में कथन है कि कितनी अनंतों बार इन्हें माँ के पहले मरा है, तो सब माताओं के वो आंसू हैं जमा करेंगे तो बड़े से बड़े ऐसे महासमुद्र बन जाएंगे। यानी बूढ़ा होकर मरना तो माता के बाद मरना तो ठीक है, परंतु ये माता के पहले मरा है ऐसे जीव भी है। ये हो गया 17 नंबर। शिष्यों के अनुरोध से धर्माचार्य आगम से अविरुद्ध, यानी जो विरुद्ध नहीं है वो अविरुद्ध, अनेक प्रकार से उपदेश देते हुए पाए जाते हैं। अतः अन्य प्रकार से 8 मूल गुण कहते हैं, यानी वो तो कोई विरोध नहीं है, कहीं मूल गुणों का कुछ स्वरूप बताया, कहीं कुछ है, अन्य पद्धति से उसका वर्णन करते हैं, परंतु वो अविरुद्ध है आगम से अनुकूल। ऊपर 18 नंबर देखेंगे। मध्यफल मधुनि शासन पंचफली वीरति पंच काप्तनुति जीव दया जल गालन मिति च क्वचिदष्ट मूल गुणा। मध्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, ये 3 तो ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदुम्बर फलों का त्याग, ये सबको मिलकर 1 नंबर दिया उन्होंने। वहां 5 अलग अलग गिनाए थे। त्रिकाल देव वंदना, जीव दया और छना पानी का उपयोग, ये 8 मूल गुण किसी शास्त्र में कहे। देखो ये 3 तो हो गए ना, मध्य मांस मधु का त्याग, चौथे रात्रि भोजन, पांचवा 5 उदुम्बर फल, फिर त्रिकाल देव वंदना 6 नंबर पर, जीव दया और छना पानी का उपयोग। विशेषार्थ, इन 8 मूल गुणों में एक पाक्षिक श्रावक के योग्य सभी आवश्यक आचार आ जाते हैं। मध्य मांस मधु रात्रि भोजन और 5 प्रकार के उदुम्बर फलों के त्याग के साथ प्रतिदिन जिन दर्शन, पानी छान कर उपयोग में लाना तथा जीवों पर दया, ये 8 बातें ऐसी है जिन्हें श्रावक सरलता से पाल सकता है। इसीलिए जिन धर्माचार्य ने आज के श्रावक को लक्ष्य करके ये 8 मूल गुण कहे हैं, उन्होंने यह भी कहा है इनमें से एक के भी बिना गृहस्थ कहलाने का पात्र नहीं, यानी ये सभी होने चाहिए। अब प्रकृत 8 मूल गुणों की चर्चा का उपसंहार करते हुए, यानी समेटते हुए, ग्रंथकार सार्वकालिक सम्यक्त्व की शुद्धि पूर्वक 8 मूल गुणों का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को, जिनका उपनयन संस्कार हो गया है, जिन धर्म के सुनने का अधिकारी बतलाते हैं। देखो जब यहाँ ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण को धर्म के नाम पर ब्राह्मण हम ब्राह्मण ही कहते, पहले तो ये जो चातुर्वर्ण की स्थापना हुई थी तो जो व्रत आदि करते थे, इसे देव दर्शन करना है, व्रत पालना है वगैरह, उनको ब्राह्मण कहने में आता था। क्षत्रिय ने वो तो सैनिक जो वगैरह थे, राजा थे, वो तो क्षत्रिय। वैश्य ने व्यापार करने वाले, यानी उनकी मुख्यता क्या थी कि वो क्या कर रहे, इसको चतुर्वर्ण कहते थे। अभी तो ब्राह्मण नाम का उन्होंने अपना धर्म ही बना लिया, यानी वैदिक ये धर्म हो सकता है, बौद्ध धर्म हो सकता है, जैन ये धर्म है, यानी वो एक दर्शन जिसको कहेंगे, ब्राह्मण ये वर्ण है, वो धर्म नहीं है। ये 19 नंबर यावज्जीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्धधि जिन धर्म श्रुतेर्योग्य स्यात्कृतोपनयो द्विज। देखो द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, अन्य को भी कहते हैं, वो बात आएगी शायद आगे। दो बार जन्मने वाला, जब वो उनके उपनयन संस्कार होता था, या हम कहेंगे ना तो 8 वर्ष का होता है बालक, तो उसके सारे उसके व्रतों का अंगीकार कराया जाता है। जैसे हम जैनी है तो उसको सब वो व्रत सिखाकर, तो इसलिए दो बार जन्म लेता है, इसलिए द्विज कहते हैं। ये सब संस्कार, धर्म के संस्कार उस पर डाले जाते थे। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे 19 नंबर के। इस प्रकार जीवन पर्यंत के लिए अनंत संसार के कारण महापाप को जन्म देने वाले मध्य आदि जो पहले विस्तार से कहे गए हैं उनको छोड़कर, यह उन्होंने सम्यक्त्व से विशुद्ध लिखा है, परंतु शुद्ध दिए ने विशुद्ध बुद्धि वाला इतना लेंगे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। हम पढ़ेंगे तो सही उसको। विशुद्ध बुद्धि वाला द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार हो जाने पर वितराग सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट धर्म को अथवा उपासकाध्ययन आदि शास्त्र को सुनने का अधिकारी होता है, क्योंकि सम्यक होने पर वो शास्त्र को सुनने का अधिकारी कहना थोड़ा जरा अटपटा लगता है। देश न मिले बिना तो सम्यक नहीं है। ऐसा होगा, हाँ वही तो, विशुद्ध बुद्धि वाला इतना ही लेना है, शुद्ध दिए ने विवेकी ऐसा ले सकते हैं उसको। विशेषार्थ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहते हैं। नीचे लिखा है देखो नीति वाक्य, त्रयो वर्णाः द्विजातयः। तीन वर्ण कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। महापुराण में कहा है जो दो बार उत्पन्न हुआ हो, एक बार गर्भ से और दूसरी बार क्रिया से, ये बात है ना, क्रिया से, यानी वो संस्कार सब किए जाते हो, कुल धर्म वगैरह उसको सिखाया जाता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं, उसे द्विज कहते हैं। परंतु जो क्रिया और मंत्र से रहित है वह केवल नाम से द्विज है, यानी जो ये क्रियाएं नहीं पालन करता वो तो नाम मात्र के लिए द्विज कहेंगे, उस कुल में जन्मा है बस इतना ही कहेंगे उसको। यहाँ द्विज को ही जैन धर्म के सुनने का अधिकारी कहा है, वह भी जब वह सम्यक्त्व पूर्वक, यहाँ पर भी सम्यक्त्व पूर्वक जो अटकता है, जीवन पर्यंत के लिए मद्यादि का सेवन छोड़े और उपनयन संस्कार से संपन्न हो। जैन धर्म के सुनने के अधिकारी की चर्चा पुरुषा सिद्धि उपाय में मिलती है, किंतु उसमें न तो द्विज और न उपनयन संस्कार का विधान है। जो शुद्ध धि 8 अनिष्ट मद्यपानादि का त्याग कर देता है वह जिन धर्म देशना का पात्र होता है, बस इतनी बात है। यानी जो 8 मूल गुणों का पालन करता है वह देशना का पात्र। आचार्य अमृतचंद्र और पंडित आशाधर के समय में 300 वर्ष अंतर है। इन वर्षों में धर्म को लेकर वर्ण आदि की बात आ गई, अन्यथा भगवान के समोसरण में तो पशु तक जाते थे और धर्म सुनते थे। क्या कहा? वहां का वर्ण की बात आ गई, और यहाँ तो ऐसा भी आता है ना, चांडाल भी समय दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये बीच में इन वर्षों में वहाँ कुछ ऐसी ये वर्णों की अधिकता हुई होगी, छुताछुत वगैरह की बात जो आती है उस संबंध में, शायद इसीलिए उन्होंने वो लिख दिया। आचार्य सोमदेव ने जिन दीक्षा के योग्य 3 ही वर्णों को बतलाया है। हाँ, जिन दीक्षा है वो मुनि दीक्षा के योग्य तो 3 वर्ण, परंतु यहाँ बात तो जिन धर्म सुनने संबंधित चल। अपने नीति वाक्यामृत में भी उन्होंने कहा है, जैसे सूर्य सबके लिए वैसे ही धर्म भी सबके लिए है, केवल विशेष अनुष्ठान में नियम है। विशेष अनुष्ठान यानी अभी जो मुनि दीक्षा आदि जो है उसके लिए कुछ नियम है, धर्म तो सबके लिए है। यह विशेष अनुष्ठान जन दीक्षा आदि है, अतः विशेष अनुष्ठान में नियम हो सकता है। धर्म श्रवण का भी अधिकार यदि सबको न हो तो बिना धर्म सुने कोई कैसे समय दृष्टि बनकर आठ मूल गुणों को धारण कर सकेगा। पंडित आशाधर जी ने अवश्य ही यह कथन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर किया है। शुद्ध धी शब्द दोनों में है, इस शब्द के अर्थ को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया है। किन्हीं विद्वानों का कहना है शुद्ध धी का अर्थ निर्मल बुद्धि है और आठ महापापों को छोड़ने से निर्मल बुद्धि होती है। इसी श्लोक का अर्थ एक विदुषी साध्वी ने इस प्रकार किया है, इस प्रकार जीवन पर्यंत के लिए मद्यपानादि महापापों को छोड़कर विशुद्ध बुद्धि हो गई है जिसकी। ये तीन वर्ण वालों को इनका पालन करके देशना के अधिकारी है और समय को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात है।
आचार्य अमृतचंद ने
शुद्ध धी का अर्थ है निर्मल बुद्धि,
निर्मल
उसको समय दृष्टि है, फिर बाद में देशना सुनता ऐसा नहीं कहेंगे। और समय को प्राप्त करके बाद में इसका त्याग होता है ऐसा भी नहीं कहेंगे, ये तो पहले योग्यता में उसके पात्रता में लेते हैं। अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण का त्याग, इसमें ये सब आते हैं। इस श्लोक की उत्थानिका में उन्होंने पंडित आशाधर जी की संस्कृत टीका का अनुसरण करते हुए लिखा है, उन्होंने यानी कोई जो भी किसी विदुषी साध्वी ने, जो पूर्वोक्त रीति से सम्यक दर्शन पूर्वक अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं। एक तरफ सम्यक दर्शन पूर्वक अष्टमूल गुणों के पालन की बात और दूसरी ओर अष्टमूल गुण पूर्वक सम्यक दर्शन होने की बात परस्पर विरुद्ध है। हमने ऐसे बताया था ना कि पंडित आशाधर जी ने अपनी टीका में शुद्ध धी का अर्थ सम्यक तो विशुद्ध बुद्धि किया है। अमृतचंद्र जी के शुद्ध धिया का भी यही अर्थ है, जिन शासन के अनुसार समय दर्शन के बिना बुद्धि विशुद्ध होती ही नहीं। हेय को हेय रूप से और उपादेय को उपादेय रूप से जानकर श्रद्धा होना ही बुद्धि की विशुद्धता है, यह सम्यक्त के होने पर ही होती है। सम्यक्त के बिना तो अष्टमूल गुण धारक भी व्रत की कोटि में नहीं आता। हाँ, तो भी उसके व्रती नहीं कहेंगे उसको, वो तो सदाचार के रूप में आ जाता है। अस्तु, अतः जिन धर्म श्रवण की यह योग्यता विशेष धर्म जैसे आगम ग्रंथ आदि है उन्हीं के श्रवण से संबंध होना चाहिए। देखो इसके लिए उन्होंने क्या दूसरे पॉसिबिलिटी बताई है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर कि जो आगम ग्रंथ है सिद्धांत शास्त्र है उसके पढ़ने के लिए कंडीशन लगाई होगी, ऐसा कहेंगे। समय दर्शन पूर्वक की बात है ना, यहाँ क्या लिखा देखा। अतः जिन धर्म श्रवण की यह योग्यता विशेष धर्म ग्रंथ जैसे आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ है ना, अभी जो हम षटखंडागम है, धवला जय धवला, अभी जो सिद्धांत ग्रंथ है उसके लिए, उनके श्रवण से संबद्ध होना चाहिए, उनके लिए यह कंडीशन डाली होगी, ऐसा इनका वहां लिखना है। सामान्य जिन धर्म के श्रवण का अधिकार तो सभी को है, क्योंकि पंडित आशाधर जी ने वो कहा था पहले में पहले जो भद्र परिणाम वाला ऐसा कुछ हमने देखा था ना, हाँ उनको सुनाना चाहिए क्योंकि उसी में से कोई सम्यक्ति हो, अन्य मति है इसलिए अन्य मति भी हो और जो विवेक मंद कषाय वाले हैं उनको धर्म सुनाना चाहिए, क्योंकि सुनने के प्रति वो तो मध्यस्थ है, सुनना चाहते हैं तो उनको जरूर सुनाना चाहिए, इससे पहले बात आएगी। शायद इसी से आशाधर जी के बाद रचे गए श्रावकाचारों में यह कथन किसी ने नहीं किया कि अमुक व्यक्ति ही जिन धर्म को सुनने का अधिकारी है। आशाधर जी ने महापुराण से एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें कहा है, मध्य मांस और पांच उदुम्बर फल तथा हिंसादि का त्याग सार्वकालिक व्रत है, यानी हमेशा ही वो चले, किंतु इसमें जिन धर्म के श्रवण की अधिकारिता वाली बात नहीं है। यह तो महापुराण के भी उत्तरकालीन दसवीं शताब्दी की चर्चा है, जब लोगों का ध्यान संभवतः उस ओर कम गया होगा। ये उसके संबंध में ऐसा क्यों लिखा, उसकी वहां को उसकी चर्चा करते हैं। आगे, जैन कुल में जन्म लेकर जन्म से अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले और दीक्षा के योग्य मिथ्या दृष्टि कुल में जन्म लेकर, ये क्या कहा, दीक्षा के योग्य मिथ्या दृष्टि कुल, ये शूद्रों को दीक्षा का अधिकार नहीं, बाकी दीक्षा के योग्य अन्य मिथ्या दृष्टि कुल ने अन्य मति जो है वो दीक्षा भी ले सकते हैं, ऐसे कुल में जन्म लेकर अवतार आदि क्रियाओं के द्वारा अपने को पवित्र करने वाले बहुओं के महात्म्य का वर्णन करते हैं, यानी अन्य मिथ्या मति वालों में जन्म लिया है फिर भी अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं और विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा उनको भी जिन धर्म की दीक्षा दी जाती है, ये बात यहाँ बता रहे, ये भी बताएंगे। बिल्कुल मानेगी ना, वो सारी क्रिया उसमें आएगी। ए 20 नंबर समझ ऊपर देख, जाता जैन कुले पुरा जिन वृषा व्यासानुभावाद गुणे ये यत्नोपनतै स्फुरन्ति सुकृता मग्रे सरा के पिते येप्युत्पद्य कुद्रुकुले विधिवशात् दीक्षोचिते स्वं गुणे विद्याशिल्प विमुक्त वृत्ति निपुनन् त्यन्वीरते ते पितान्। देखो, पूर्व जन्म में सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए धर्म के अभ्यास के महात्म्य से जो जैन कुल में उत्पन्न होकर अपने को बिना प्रयत्न के प्राप्त हुए सम्यक्त्व आदि गुणों से लोगों के चित्त में चमत्कार करते हैं, वे पुण्यशालियों के मुखिया बहुत थोड़े हैं। क्या कहते हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, धर्म का अभ्यास किया है, सम्यक्त्व प्राप्त की वगैरह वगैरह, तो कहते हैं ऐसे बहुत कम, और जो मिथ्यात्व सहचारी पुण्य कर्म के उदय से, क्या कह, कैसा पुण्य कर्म है, मिथ्यात्व के साथ वाला है, मिथ्या दृष्टि और पुण्य का उदय है, उससे विद्या और शिल्प से आजीविका न करने वाले अतएव दीक्षा के योग्य, यानी इनके द्वारा आजीविका करने वाले दीक्षा के योग्य नहीं, ऐसा कह दिया। अभी शिल्प ने वो खाली वो कारीगरी उसको नहीं लिया, यहाँ पर उन्होंने वो तो लोहार कड़िया वगैरह उसको लिया। तो कहते हैं कि दीक्षा के योग्य मिथ्या दृष्टि कुल में भी जन्म लेकर अपने को सम्यक्त्व आदि गुणों से पवित्र करते हैं, क्योंकि पुण्य का उदय है तो कुछ देशना भी मिली, जो कुछ निमित्त बने वैसा, तो कहते वो भी दीक्षा के योग्य हो जाते हैं, सम्यक तो इससे पवित्र होते हैं, वे भी उन जैन कुल में जन्म लेने वालों के ही अनुसरण करते हैं, अर्थात उन्हीं के समान होते हैं, यानी यदि उन्होंने अंगीकार किया है तो उनमें और उनमें अभी कुछ अंतर है, वो भी मुनि दीक्षा अंगीकार करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी इसका विशेष अर्थ कल पढ़ना पड़ेगा, 66 पृष्ठ पर हम यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान करे सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा लेत। होता है।